नारायण नारायण। रोने का दिन उसलिए कहते हैं कि इतने साल बीत गए, आयुष्य के 60-70 साल में से एक साल पूरा हो गया और परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आज के दिन मतलब जिसका जो वर्षगांठ हो, वर्ष पूरा होते ही रो लेना चाहिए कि पूरा वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गया। जो काम करने के लिए हमारा मनुष्य तन मिला था वो काम नहीं कर पाए, उसलिए रो लेना चाहिए। इसलिए आज रोने का दिन भी था, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई। नारायण 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 नारायण। इसे संधि काल भी कहा जाता है। 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष भूतकाल में चले गए और 51वां शुरू होने का है। बीच की जो संधि है उस संधि काल में प्रतिदिन 4 संधियां होती और मैं वर्ष में एक संधि आती। प्रतिदिन 4 संध्या होती है, रात पूरी होने को है और दिन शुरू होता है, वो प्रातः संध्या। प्रातः काल का समय 12:15 के करीब करीब पूरा होने को होता है और 12 के बाद मध्यान्ह शुरू हो जाता है। ये मध्यान्ह संध्या। पूरा दिन खत्म होने को है और रात्रि शुरू होने को है, उसको सायन काल की संधि कहा जाता है, उसे सायन संध्या। और रात्रि के 2 पहर पूरे होने को होते हैं, 12:15 से 12:15 के बीच का समय, वो भी मध्य रात्रि संध्या होता है। ये संधि काल ध्यान भजन के लिए नितांत ज्यादा उपयोगी है। और वर्ष में एक बार संधि काल आता है, वो वर्ष भर का नफा नुकसान सोचकर आने वाले वर्ष में क्या क्या करना है ऐसा निर्णय लेने का ये संधि काल, उसे वर्ष गांठ भी कहते हैं। रोने का दिन भी कहते हैं, वो समझ गए आप। तो अगले वर्ष किन कारणों से शोभ हुआ, किन कारणों से लोभ हुआ, किन कारणों से मोह हुआ, किन कारणों से अशांति हुई, जरा सिंह अवलोकन कर लेना चाहिए। बीते हुए वर्ष के जो खास खास प्रसंग रहे, उन प्रसंगों में कैसे हम लोग काम के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश, चिंता के वश, ईर्षा के वश, अपने परमात्मा भाव से अथवा अपने परमात्मा पाने के लक्ष्य से हम किन कारणों से च्युत हो गए, गिर गए, उन पर सिंह अवलोकन कर लेना चाहिए। और दोबारा इस वर्ष में हम इन कारणों से न गिरेंगे, ऐसी एक सतर्कता भरी दृष्टि भविष्य पर डाल देनी चाहिए। जिनके साथ वैमनस्य हुआ हो उनसे उदारता भरा व्यवहार करके चित्त की संघर्षमय वृत्ति को शांत कर देना चाहिए। और जिनके साथ अपने भलाई कार्य किया हो अपनी भलाई को भूल जाना चाहिए, क्यों वर्ष बीत गया तो अपना भलाई करने का बात भी भूल जाना चाहिए। गाता नहीं फिर कि मैंने ये इतना मदद किया, ये सहयोग किया, ये दिया वो दिया, नहीं। जैसे समय सरक गया तो समय में हमने जो मदद की या किसी को सुख दिया, वो समय सरकने के साथ हमारी सेवा हमारे हृदय से हमें सरका देनी चाहिए। जय जय हमें माना हम लोग आप बहुवचन। किसी के साथ अनुचित व्यवहार हो गया है और हृदय में गांठ पड़ गई है तो वर्ष गांठ के दिन उस गांठ को खोल देना चाहिए।
वर्ष के लिए जैसे दिवाली के दिनों में व्यापारी कौन सी वैरायटी कौन सा माल रखने से भरने से अथवा कौन सा माल का ज्यादा रिलेशन होता है बिक्री होता है किन कारणों से नफा होता है और किन कारणों से माल झंगड़ पड़ा रहता है वो व्यापारी सर्वैया निकालते हैं। ऐसे ही हर दिवाली व्यापारी सर्वैया निकालते हैं और हर अप्रैल 31 मार्च को बैंक के सर्वैया 31 दिसंबर को बैंक के सर्वैया निकालती है जहां तक मुझे ख्याल है अथवा 1 अप्रैल तक सरकारी कामकाज का सर्वैया निकलता है। ऐसे ही तुम्हारे देह के वर्ष भर के कार्यकलापों का सर्वैया निकालने का जो मध्यकाल है वर्ष पूरा हुआ और नया शुरू होने वाला है ये जो काल भगवान है उस काल भगवान में स्थित होकर अकाल तत्व को आत्मदेव को कैसे पहचाने ऐसा कोई नियम घड़ लेना चाहिए। अपनी की हुई भलाई भूलने की घड़ियां वो है और अपना किया हुआ किसी ने अपने से बुराई की है तो भूल जाना चाहिए और अपनी की हुई भलाई अपने को भूल जानी चाहिए। आने वाले वर्ष के लिए शुभ संकल्प और संकल्प इतना बड़ा बनाना चाहिए कि छोटी छोटी बातें और घटनाएं तुम्हारे चित्त को तिल मिला ना दे। जिस आदमी को करोड़ों रुपया नफा करना होता है वो 1,000, 2,000, 10,000 की परवाह नहीं करता, 1,00,000-2,00,000 फेंकने में परवाह नहीं करता क्योंकि करोड़ लेना है, 10,00,000 भी उड़ाने में परवाह नहीं करना है अगर करोड़ का मुनाफा होता है तो। उसका 2-5 लाख खर्च हो जाता है तो वो सेठ लोग बड़े खुशी से कर लेते क्योंकि करोड़ रुपए की आमदनी होती है। फसल में कि 50 टन माल गेहूं उतरने वाला है तो 1-2 टन गेहूं अपने हाथों से ही फेंक देते खेत में, परवाह नहीं करते, बुआई कर देते। ऐसे ही लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी चीज अपने आप त्यागने की इच्छा हो जाती, लाभ ज्यादा है तो छोटा मोटा संग्रह छूट जाता। छोटी मोटी चीजें जब चाहे छोड़नी पड़े तो छोड़ सको, छोटी मोटी चीजें घर मकान दुकान रिश्ते नाते तो क्या, लेकिन ये छोटा सा 5.5 फीट का देह छोड़ना पड़े तभी भी तैयार हो जाओ क्योंकि विदेही आत्मा पाना है। ऐसा लक्ष्य वर्षगांठ के दिन बना लेना चाहिए। अगर लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो नीची बातों में चित्त चलित हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य ऊंचा है तो छोटी मोटी बातों में छोटे मोटे आविष्कारों में उपलब्धियों में अथवा नुकसानों में चित्त तुम्हारा डोलायमान न होगा। मेरो तो गिरधर गोपाल अवर नहीं कोई, मेरा लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है, मेरा लक्ष्य तो परमात्मा है। दासी भागती भागती आई, सेठ जी आपका कीमती जो हार था वो सेठानी साहिबा से कहीं खो गया है। सेठ जी ने कहा अच्छा खो गया तो ढूंढो। साथी ने पूछा कि आपको दुख क्यों नहीं होता, मेरे हृदय का हार तो मेरा गिरधर गोपाल है, वो तो कभी नहीं खोता, ये तो खोने वाली चीज है। नहीं तो क्या होता कि एक तो हार खो गया, बाहर की नश्वर चीज नाश हुई, और दूसरा अपना शाश्वत के काम आ जाए ऐसा दिल भी खराब हो जाता। इसलिए सेठ का लक्ष्य ऊंचा था, गिरधर गोपाल को इष्ट माना था तो दुख के प्रसंग में भी चित्त थमा रहा। 4 घंटे के बाद दासी भागती हुई आई, सेठ जी हार खोया न था, तिजोरी में है गुप्त खाने में गलती से रख दिया गया था, मिल गया है, बड़ी खुश होती आई। सेठ जी कहते अच्छा मिल गया ठीक है कोई बात नहीं। उससे उतने प्रसन्न नहीं हुए। जो छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है और छोटी छोटी उपलब्धियों में प्रसन्न हो जाता है वो अज्ञानी है। जयराम जी की वो बालकमती है, जैसे बालक को चॉकलेट दे दो, लॉलीपॉप दे दो, अरे सिगरेट के दो खोखे पकड़ा दो, पुरानी टिकट पकड़ा लो, मोर का पीछा दे दो, खुश हो जाएगा, और छीन लो तो त्राहिमाम कर देगा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो समझता कि ये धरोहर बेकार है। ऐसे ही जिसका लक्ष्य वर्षगांठ के दिन ऊंचा हो गया, उसको वर्ष भर में छोटा मोटा प्रमोशन मिले अथवा छोटी मोटी बदली हो जाए, छोटा मोटा यश या मान पत्र मिल जाए अथवा छोटा मोटा अपयश या अपमान हो जाए, वो समझता कि संसार का खिलवाड़ मात्र है, मेरे वर्षगांठ का संकल्प है कि कोई भी परिस्थितियां आएगी, आने जाने वाली परिस्थितियों में सदा रहने वाले मेरे परमात्मा को नहीं भूलूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। जय जय। इस प्रकार की वर्षगांठ की जो वर्ष भर के निष्ठा को संभालने की प्रतिज्ञा है, वो कई छोटे मोटे मामलों में रक्षा करती। आदमी की समझ उम्दा है तो परिस्थितियों में उसकी बड़ी रक्षा होती, और उसका चित्त सम रहता है तो प्रकृति उसके फेवर में काम करने लग जाती, परमात्मा उसकी संभाल लेने को तत्पर हो जाता है। विवेकानंद राजस्थान में किसी छोटे स्टेशन पर उतरे थे यात्रा करते हुए, जहां एक मारवाड़ी अभिमानी सेठ भी उतरा था। गर्मियों के दिन और राजस्थान, छोटा स्टेशन, सेठ तो सुराई का ठंडा पानी पिए, नहीं तो पैसे देके पानी पीता, और विवेकानंद कल के प्यासे थे, पैसे थे नहीं। अब विवेकानंद की भाषा में मैं कहूंगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी, कोई टिफिन नहीं था। वो पेट पालू सेठ मेरे को साधु बाबा समझकर मेरी मखोल उड़ाता हुआ बार बार पानी पिए और ऐठे खोंखार करे, और मैं तो सहता गया, क्यों उसकी मखोलबाजी बढ़ती गई। स्टेशन पर जब उतरे तो उसने अपनी शतरंजी बिछा दी, सुराई में से फिर ठंडा पानी पिया, रबड़ी खाई, पूरी खाई, भजिए खाए, मेरे को बोला कि देखो धंधा नौकरी करते कमाते पैसे जुटाते तो तुम भी ठंडा पानी पीते, चटाई पर सोने को मिलता, रबड़ी खाने को मिलती, पकोड़े चबाने को मिलते, पूरी का जायका लेने को मिलता, ऐसे ही लाल वस्त्र पहन के साधवा साध्वी होकर क्या जिंदगी खराब कर रहे हो। मेरी मजाक उड़ाते हुए मेरे को उसने मैणा मारा, मेरे को दुख हुआ। विवेकानंद की भाषा में कह रहा हूं, सोचा कि इसको कुछ सुना दूं जरा, कल का प्यासा और भूखा था और फिर ये मेरी मजाक उड़ा रहा था। फिर सोचा कि आखिर मैं सन्यासी हूं और मेरा लक्ष्य परमात्मा है, छोटी छोटी बात में मैं क्यों तिल मिला जाऊं, मैं तो शांत रहा। देखते ही देखते एक कंदोई आया, हलवाई, जिसके बगल में चटाई थी, झाड़ू था, हाथ में टिफिन था, दूसरे हाथ में सुराई थी। चट से झाड़ के नीचे उसने झाड़ू दे मारा, चटाई बिछा दी, हाथ धोए, हाथ जोड़कर मेरे सामने आ गया कि स्वामी जी आराम करिए, और मैं टिफिन लाया हूं गर्मा गर्म, पूड़ी रबड़ी पकोड़े और चटनी रायता बनाकर, महाराज आप जल्दी से तैयार हो जाइए, भोजन करिए। मैंने कहा कि भैया मैं तुझे जानता नहीं महाराज, मैं तुमको पहचानता हूं, मैं इस देहात में पहली बार उतरा हूं और तुमने मेरे को कहीं नहीं देखा। महाराज मैंने तो तुमको कहीं नहीं देखा, लेकिन जिससे कोई छुपा नहीं उसने तुमको ठीक से देखा है। मैं हलवाई हूं, स्टेशन पे सामने मेरी स्टेशन के बाहर दुकान है, मैं भोजन करके लेटा था तो महाराज मुझे मेरे ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मेरा एक प्यारा साधु सुख और दुख में सम रहने वाला, कल का भूखा और प्यासा है, तू जल्दी उठ और पूरी बना, साग बना, रायता ले जा, और जल्दी प्यार से चटाई बिछाकर उसको सुला दे, आराम करा दे, भोजन करा दे। उस हलवाई की बात सुनकर मुझे लगा कि जगत नियता हम अभागे लोग तेरी करुणा कृपा का एहसास न करते हुए तुच्छ रुपए पैसे और सामग्री पर भरोसा करते हैं। जितना सामग्री पे भरोसा करते हैं उससे आधा अगर कोई तेरे पर भरोसा करता है तो कितनी सुविधा मिल जाती है प्रभु। ऐसा मौका मेरे जीवन में दूसरी बार भी हुआ था। किसी गांव में मैं गया, विवेकानंद की भाषा में बोल रहा हूं, और शाम को पहुंचा, देर हो गई थी, लोग आए मिले प्रश्न किए और लोग चले गए। दूसरे दिन सुबह आए, दोपहर को आए, लोगों ने खूब सवाल पूछे और चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि खाया है कि नहीं। एक वृद्ध आया, उसने दूसरा कोई प्रश्न न पूछा और कथा बता सुने नहीं, पूछा कि स्वामी जी तुम कल के आए हो, भोजन भोजन कैसा होता है, प्रबंध क्या करते हो। मैंने कहा कोई लाएगा तो खा लूंगा। उसने कहा महाराज मैं जात का मोची हूं, हम कैसे कहें आपको कि हमारे घर का खाओ। लेकिन उस बुड्ढे के कहने में कोई सच्चाई थी, कोई प्रेम था। मैंने कहा हम तो साधु ठहरे, जात पात का यहां भेद कहां सच्चे साधु के जीवन में। हमको तो जो प्रेम से श्रद्धा से पवित्रता से ला देता है हम खा लेते। वो बुड्ढा गया, झट से रोटी और सब्जी बनाकर लाया। उस वक्त उस बुड्ढे के भोजन में जो मुझे रस आया, प्रेम आया, जो स्वाद आया, उस समय इंद्र सुवर्ण के बर्तन में पंचामृत सहित स्वर्ग का अमृत ले आता तो शायद मुझे वो फीका लगता जितना उस बुड्ढे की रोटी में मिठास थी। क्या उस बुड्ढे को प्रेरणा मेरे परमात्मा ने नहीं किया होगा। तो जिसका लक्ष्य ऊंचा है, परमात्मा है, उसको छोटी मोटी प्रतिकूलताओं में, छोटे मोटे आवेग और आवेश पैदा करने के वातावरण में भी अपने लक्ष्य की याद रहती और वो बच जाता है। क्रोध करके तपस्या नाश होती है, उस तपोनाश के प्रसंग से ऊंचा लक्ष्य है तो आदमी बच जाता है। दुश्मन बनाने का प्रसंग से ऊंचा लक्ष्य है तो आदमी बच जाता है, और मित्रों की ममता में फंसने का प्रसंग आए और ऊंचा लक्ष्य हो के मित्र हमारा परम मित्र तो परमात्मा है, ये रास्ते के मित्र हैं। और इन रास्ते के मित्रों से मित्रता उस लिए है कि उस मित्र को पाने में सहयोग दे रहे हैं, तब तक उस मित्र के रास्ते से अगर रोकते हैं तो कट तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही, रामायण में कहा है करोड़ों वैरियों के समान उनका त्याग कर दो, अगर भगवान के मार्ग में तुम्हारे आत्म परमात्मा के मिलन के लक्ष्य में अगर वो विघ्न डालते हैं तो उनको कोटि वैरियों के समान समझ के उनका त्याग कर दो। अगर ईश्वर प्राप्ति में गुरु विघ्न डालता है तो आप बलि राजा को याद करके गुरु का त्याग कर लो, गुरु की बात का। लेकिन सच्चा गुरु ईश्वर के रास्ते से रोकेगा नहीं। तो शुक्राचार्य ने भगवान के साथ जो संकल्प किया था उसमें अड़चन कर रहे थे। अगर पत्नी रोकती है तो राजा भरतरी की नाई वैराग्य बढ़ाकर छलांग मारो, और पता रोकता है तो मीरा की नाई राणा की बात को ठोकर मार के ईश्वर के रास्ते चल पड़ो। अगर बाप रोकता है तो प्रह्लाद को याद कर लो, अगर मां रोकती है तो ध्रुव को याद कर लो। बाल सहलाते जा रही है और बेटा सो जा, हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। मां को नींद आई ना आई और ध्रुव चुपके से दबे कदम रखकर चल पड़ा। अगर सेठ रोकता है, सेठानी रोकती है, नौकर रोकता है या नौकरानी रोकती है, किसी की रोक को तुम महत्व न दो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तुम बनाओ कि मनुष्य जन्म परमात्मा साथ का जो अपना शाश्वत संबंध है उसका साक्षात्कार करने का है। तो आज के दिन मतलब जिसकी जो वर्षगांठ हो, जय जय, उस दिन संधि के दिन बीता हुआ वर्ष में जो गलतियां हुई हो आने वाले वर्ष में वो गलतियां न करने का संकल्प करें और सावधानी करें। बीते वर्ष में जिनके साथ जरा खट्टा व्यवहार हो गया हो उनसे मेल मिलाप कर ले, बीते हुए वर्ष में जो सत्कृत्य किए हों और भलाई के काम किए हों उन पर पोता कर दे, याद न करे। 5 मिनट तुम अपने बंद कमरे में बिल्कुल अकेले ईश्वर के गुरु के होकर खूब प्रेम से उछल कूद करके नाचो। नृत्य से तुम्हारी आह्लादनी शक्ति जो भक्ति की यमुना है, प्रेम का प्रसाद है, ज्ञान की गंगा है और आनंद का उछलता सागर है, तुम्हें ज्ञान में, भक्ति में, अंतःकरण की दिव्यता में बड़ी सहायता मिलेगी। खाली 5 मिनट, अरे अपने कमरे में, ऊपले कमरे में हो चाहे निचला कमरा हो, बड़ा हो अरे चाहे छोटा हो, 5 मिनट तुम नाचो, तुम्हारा जिद्दी झक्की स्वभाव छूट जाएगा। श्री राम, तुम्हारे फिसलाट के प्रसंग में तुम बच सको ऐसा प्रेम अमृत तुम्हारे पास आ जाएगा। इधर उधर का बात जरा ढिचू पिचू आता हो, कमरा बंद करके 3 आचमन पानी की पी लो और खूब नाचो 5 मिनट। तुम्हारी सुषुप्त आह्लादनी शक्ति, प्रेम शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति विकसित होगी। नारायण 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 नारायण। आपको जो मंत्र अच्छा लगा वो जपने लग गए, जो भगवान अच्छा लगा उसको मानने लग गए, जो भोजन अच्छा लगा वो खाने लग गए, जो कपड़ा अच्छा लगा वो पहनने लग गए, और जो फिल्म अच्छा लग गया वो देखने लग गए, जो काम अच्छा लगा वो आप करने लग गए। आपके मन ने जो आपको आज्ञा दे दी वो आपको करने का स्वभाव बन गया। इससे आपका कल्याण नहीं होगा, इससे मन पुष्ट होगा और एक दिन तुमको पटक देगा। कई भोले लोग मंत्र दीक्षा की याचना करते, मंत्र मिल जाता है, बाद में आते हैं कि मैं फलाना मंत्र करता हूं वो तो करने की छूट है ना। हाय रे हाय, मैं फलाना नियम करता हूं वो करूं, वो तो करूं ना। जब तुम्हारे मन माने साधन से तुमको जीवन में कोई उजाला न दिखा तभी तो गुरु मुख गए। तुम्हारे मन माने साधन से, मन माने भोग से, मन माने पहरवेश से, मन माने मंत्र से और मन माने देव से तो तुम्हारा मन पुष्ट हो जाएगा, मन तुम्हारा और तुम्हारे छाती पे चढ़ बैठेगा। इसीलिए अपना कल्याण करना चाहे तो सत्संग करना चाहिए। अपने मनमाना क्रियाकलाप करने से मन पुष्ट होता है, लेकिन सत्संग में और सतपुरुषों के सानिध्य में, सतशास्त्र के ज्ञान में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो हमारा मन सूक्ष्म होता है, पवित्र होता है। तो वर्षगांठ के दिन ये पक्का कर लेना चाहिए कि इस वर्ष कम से कम 365 दिन है तो कम से कम 365 कलाक तो सत्संग करूं। किसान ये बात सच्ची, ये बढ़िया है। सत्संग सुनने में तो अपने तो आराम से बैठो, सत्संग करने वाले को रोज नया माल लाना पड़े। श्री राम। सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। उस समय तो आनंद आता है, पुण्य होता है, लेकिन सत्संग की बात जब कोई जीवन में घटना आती है ना, वो सत्संग की बात रक्षा कर लेती। एक लड़का प्रतिदिन कथा में जाता था, कथा प्रारंभ हो उसके पहले बैठता था। ये नहीं तो कथा सत्संग गुरु आने के बाद दौड़ दौड़ के आ जावे, ऐसा सगवड़िया चेला नहीं था। जय जय गुरु जी आए उसके पहले वो जगह ले लेता था, गुरु जी सत्संग करके विदा हो उसके बाद जाता था और बड़े अदब से हाथ जोड़े खड़ा रहता था। गुरु ने देखा कि लड़का बड़े बड़े तिस्मार खान भी बाद में आ जाते हैं और जिनके सिर पर काल नाच रहा है, आज मरे या कल मरे, ऐसे लोग भी कभी कथा में आते कभी नहीं आते, लेकिन ये उभरती हुई आयुष्य में बच्चा है और कथा में आता है, मेरे आने के पहले बैठ जाता है। अपना आसन लेकर अपने आसन पर बैठकर जप किए होते हैं वो बरकत वाले होते हैं। अपनी माला, अपना आसन और गुरु दत्त मंत्र, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इनमें डटे रहे तो बहुत लाभ होगा। और जिस माला पर जप किया है वो माला के मन के साधारण मन के मत समझना। भले माला टूट गई, मन के खो गए, फिर जो भी बचे हैं वो भी बड़े तेजस्वी होते हैं, परमात्मा के जप के परमाणु वाले मन के होते हैं। जो कोई राम नाम सत हो रहा है उसके मुंह में वो दो मन के रख दो, अथवा तो उसके साथ दो मन के अर्पण कर दो, उसका कल्याण होता है। श्री राम, कैसी सत्संग में कैसी सब प्रकार की जानकारी हमको मिल जाती है। महाराज, लड़का पहले आता था और बाद में जाता था। एक दिन बाबा जी ने बुलाया कि बेटे, इतना नन्ना सा है और इतना एक तान होकर कथा सुनता है, और कथा होती है, सत्संग होता है, उसके पहले आता और बाद में जाता है, बोल तू क्या चाहता है। ले महाराज, मैंने तो कथा में से सुना कि सारे कर्म स्वार्थी स्वार्थ से करना, ये तो बनियाओं का काम है। क्या भगवान की कथा भी किसी स्वार्थ से सुनना चाहिए? भगवान अपने हैं उसके लिए नहीं सुनना चाहिए? अपने हैं प्यारे हैं तो प्यारे का वर्णन सुनने में आनंद आता है, प्यारे का नाम लेने में आनंद आता है, कथा में कल्याण होता है, ऐसा सुना है। अभी तू बच्चा है, तेरे को कथा में आने की प्रेरणा किसने दी, रुचि कैसे हो? बोले स्वामी जी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। मेरी माने का चूल्हा जला, पानी गर्म करना है कपड़े धोने के लिए। मैंने लकड़ियां डाली लेकिन जली नहीं। माने कहा पहले छोटी छोटी लकड़ियां डाल, उसको आग पकड़ लेगी, फिर बड़ी लकड़ियों को भी आग पकड़ लेगी। मेरे को हुआ कि छोटी छोटी लकड़ियों को आग आसानी से पकड़ लेती, बड़े तो 60 वाले 70 देख सकते, 70 वाले 80 भी देख लेंगे, 80 वाले 90 भी, 90 वाले 100 भी, लेकिन छोटी लकड़ियां न जाने कब झपेट में आ जाए कोई पता नहीं। इसलिए महाराज मैं कथा में आ गया। ऐसा ही एक प्रसंग था। एक युवक 16-17 साल का सन्यासी हुआ और नारायण हरि करके अलख जगाया किसी विदुषी के द्वार पर, बुद्धिमान महिला के द्वार पर। महिला ने देखा कि अरे, इतनी कोमल अवस्था में और साधु, भीतर से तो खुश हुई लेकिन महिला विद्वान थी, अकलमंद थी। उसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों? उस युवक से डर के से पूछा, 16-17 साल के सन्यासी से। लड़के ने उत्तर दिया वो समझने जैसा है। माताजी मैं जानता हूं और नहीं भी जानता हूं। माई ने पूछा इतनी जल्दी क्यों? उत्तर मिला कि मैं जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं। मैं जानता हूं कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। ये मैं जानता हूं, इसलिए जल्दी लग रहा है। अभी मेरे विद्या अध्ययन का समय है, फिर गृहस्थ आश्रम जीने का समय है, फिर वानप्रस्थ की गाड़ी धकेलने का समय है, बाद में सन्यासी फक्कड़ होने का, ये मैं जानता हूं। फिर भी मैं नहीं जानता हूं कि मौत कब पकड़ ले, इसलिए मैं जल्दी साधु हो गया। तो महाराज 5 मिनट आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपने दुकान में, अपने गोडाउन में, अपने अपने आश्रम की जो कुटिया मिली है उसमें 5 मिनट के लिए ईमानदारी से, अहोभाव से आकर भगवान को, गुरु को प्यार करते हुए नाचे। अगर आप और एक आइडिया समझना चाहें तो मैं एक युक्ति एक मास्टर की तुमको और भी देना चाहता हूं। अपने भगवान से या गुरु से प्रतिदिन एक बार आप हाथ, मन ही मन हाथ जरूर मिलाइए। क्या बात है। भगवान हाथ मिलाते ना, भगवान और गुरु पूर्ण तत्व में होते हैं। पूरे होते हैं ना तो जो काम करते वो पूरा करते हैं। तो आप ये समझिए कि मैं दायां हाथ भगवान से या गुरु से मिला रहा हूं। रामायण का प्रसंग है, सुग्रीव से जब भगवान हाथ मिलाते तो ऐसा दबाया कि सुग्रीव याद करता रहा। ऐसे भगवान और गुरु से तुम हाथ मिलाने जाते हो वो ऐसा दबाते हैं कि तुम एहसास करो कि आहा हा जोरों का दबाया, आहा हा आहा हा। वो 5 मिनट कीर्तन के बाद एक बार एक आध मिनट हाथ मिला दो और आहा हा जोरों का दबा दिया। ऐसी याद करो, वो जोरों की याद दिन भर जोर वाली हो जाएगी, दिन भर बंदगी बन जाएगी। भाई दे हरी हरी बोल।